ओम शांति। तो आज आप हम सभी फिर से कल के मुरली रिवाइज करेंगे। मुरली की डेट है 19/8/2018 और रिवाइज डेट है 29/12/83। मुरली का टाइटल है संगम युग, सहज प्राप्तियों का युग। तो हम सभी संगम युग में ईश्वरी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इस ईश्वरी पढ़ाई पढ़ते पढ़ते जीवन में कई बार ऐसा होता है जो हम थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, हमारा पुरुषार्थ पर पढ़ाई पर अटेंशन कम हो जाता है। वैसे भी संसार में जो मनुष्य आत्मा की नेचर है कि लंबे समय तक कोई भी कार्य करता है तो वो कार्य करते करते उसके प्रति उसकी रुचि कम हो जाती है, उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है, और यदि कोई इम्पोर्टेंट कार्य है तो उसको फिर वार्निंग दी जाती है कि आपको ये कार्य करना ही है, करना ही पड़ेगा। तो इस मुरली से भी हम देखेंगे कि भगवान के महावाक्य जो हमें शिक्षा के रूप में मिले हैं उसको हम वार्निंग के रूप में अप्लाई करेंगे। तो उसमें पहली बात है जो बाबा ने कही, वार्निंग के रूप में उसको हम लेंगे। तो हम सभी रेस्पॉन्सिबल आत्माएं हैं, संसार के आधार मूर्त हैं। तो आधार मूर्त आत्माओं का सारे संसार पर उनका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम जो भी करेंगे संसार की आत्माएं हमको फॉलो करेंगी। तो बाबा ने कहा कि आप जो आधार मूर्त आत्माएं हो, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सदा जागती ज्योत बनकर रहें, क्योंकि आप जागेंगे तो जग जागेगा, जहान जागेगा। यदि आप सोएंगे तो संसार सोएगा। तो हम सभी पर कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यदि सो रहे हैं तो संसार की आत्माएं भी सोई हुई हैं या सो जाएंगी। तो बाबा ने कहा कि आपके ऊपर संसार की आत्माएं निर्भर कर रही हैं, तो आपको जागती ज्योत बनना है। किन किन बातों में? मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात हमारी स्मृति सदा जागती ज्योत बनकर के रहे। तो बाबा ने कहा कि आप जागते तो संसार की आत्माएं जागती हैं और आपका प्रभाव उन पर पड़ता है। जब आप चढ़ती कला में होते हैं तो संसार की आत्माएं, उन आत्माओं का भी कल्याण हो जाता है, वो यथाशक्ति मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करती हैं। तो वो भी हमारी स्थिति पर निर्भर करता है कि यदि हम जागती ज्योति हैं, यदि हम चढ़ती कला में हैं, तो संसार की आत्माओं का भी भला होता है, उनका कल्याण होता है। और बाबा ने कहा कि आप जब राज्य करते हैं तो आपके राज्य के समय तीनों लोकों में, बाबा ने कहा तीनों लोकों में दुख अशांति का नामो निशान नहीं रहता है। तो हम सभी पर कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम सभी को सदा जागती ज्योत बन करके रहना है, सदा ज्ञान के स्मृति स्वरूप रहना है। और जो अनेक प्रकार की निद्रा है, अज्ञान निद्रा है, आलस्य की निद्रा है, अलबेलेपन की निद्रा है, बहानेबाजी की निद्रा है, इन सबसे अपने आप को मुक्त करना है। तो पहली वार्निंग क्या थी कि सदा जागती ज्योत बनकर रहना है। सेकेंड वार्निंग है कि ब्राह्मण जीवन में जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य के प्रति हमें सचेत रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि इस संगम युग पर जो श्रेष्ठ प्राप्तियां हो रही हैं वो प्राप्तियां संगम युग पर ही हो सकती हैं, बाकी सारे कल्प में नहीं। तो बाबा ने कहा कि प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय अभी है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इसके लिए बाबा ने मुरली में क्या कहा, इस समय संगम युग के समय आप एक शक्तिशाली संकल्प, एक शक्तिशाली कर्म का फल पदम गुणा होकर रूप में आपको मिलता है। इस समय का अगर एक आपका शक्तिशाली संकल्प या कर्म है तो उसका फल आपको पदम गुणा होकर के रूप होकर के मिलता है, लेकिन शक्तिशाली है तो। तो बाबा ने कहा कि अगर संकल्प शक्तिशाली है, कर्म शक्तिशाली है, तो आपका पदम गुणा जमा होता है। साथ साथ दूसरी बात कही कि आपका पावरफुल वातावरण रूपी धरनी है, धरनी पावरफुल है तो उसका श्रेष्ठ फल मिलेगा, निकलेगा। और तीसरी बात बाबा ने कही कि अगर संकल्प शक्तिशाली है और कर्म भी है, धरणी भी श्रेष्ठ है, लेकिन बीज लेकिन फल निकलने से पहले यदि आपने स्वीकार कर लिया, कच्चा फल खा लिया, तो भी उसका जो फल मिलना चाहिए पद्म गुणावकर रूप में वो आपको प्राप्त नहीं होगा। और चौथी बात, बाबा ने कहा कि माया जो पंछी है, वो माया के पंछी अगर भिन्न भिन्न रूप से आपको डिस्टर्ब करते हैं, परचिंतन, प्रदर्शन, व्यर्थ चिंतन, वातावरण, संग दोष, तो वो भी आपके फल को खत्म कर देते हैं। तो संगम युग पर जो हमें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होनी चाहिए, वो फल की प्राप्ति हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें इसमें इसको वार्निंग के रूप में लेना है। तो इसमें बाबा ने क्या वार्निंग दी कि जो अनेक प्रकार के पंछी हैं, जैसे कि बाबा ने कहा कि मैंने किया, अगर ये संकल्प आता है कि मैंने किया तो अर्थात आपने कच्चा फल खा लिया। तो हम जो भी कर्म करते हैं, जो संकल्प करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, उसमें मैंपन का अभाव हो, और जो अनेक प्रकार की जो माया अनेक रूपों में आती है, भिन्न भिन्न रूपों से, संग दोष, परचिंतन, प्रदर्शन, व्यर्थ संकल्प, उन पर भी हमें पूरा अटेंशन रखना है, निगरानी रखनी है। तो माया जो चिड़िया है उसको पिंजड़े में बंद रखना है। तीसरी वार्निंग है सफलता के चाहने वालों के प्रति वार्निंग, क्योंकि हम सब सफलता को चाहते हैं। ब्राह्मण जीवन जो एक श्रेष्ठ जीवन है, और इस जीवन में हमको हर प्रकार का सपोर्ट है, स्वयं भगवान का साथ है जो सर्वसमर्थ है, और संगम योग भी एक वरदानी समय है, और हम स्वयं भी समर्थ आत्माएं हैं। और संगम युग में हम सभी को ये लक्ष्य रखना भी है कि हर बात में सफलता प्राप्त हो, क्योंकि संगम युग पर ही हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। यदि संगम युग पर हम इसमें असफल हुए तो सारे कल्प में वो अवसर नहीं मिलेगा। तो बाबा ने इसमें कहा कि लेकिन संगम युग में सफलता के साथ साथ असफलता का भी कभी कभी दौर चल पड़ता है। क्यों चल पड़ता है? जबकि कहते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं, हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, श्रीमत पर भी चल रहे हैं, योग भी करते हैं, श्रीमत पर भी चल रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती है। क्यों? तो क्या कारण है? तो इसमें बाबा ने कहा कि आलस और अलबेलापन, ये दो बातें हैं, आलस और अलबेलापन। तो बाबा ने कहा कि जहां आलस और अलबेलापन है, वो जैसे कि आप स्मृति के किले से बाहर हो, तो जैसे कोई किले से बाहर अगर है और शत्रु अगर शक्तिशाली है, तो वो सहज ही उस सेना पर, उस राजा पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो बाबा ने कहा कि यदि आप अलबेलापन और आलस में हैं, तो आप समझो जैसे कि हम स्मृति के किले से बाहर हैं, तो माया आप पर सहज अटैक कर सकती है। और दूसरी बात, बाबा ने कहा कि यदि आप किले के अंदर भी हैं, लेकिन आप में के अंदर दृढ़ता की शक्ति नहीं है, कोई ना कोई शक्ति का अभाव है, तो भी समझो जैसे कि आपने किले के अंदर जो कोई खिड़की है, कोई दरवाजा है, उसको खोल रखा है, तो उससे भी दुश्मन बार करके आपको हरा सकता है। तो बाबा कहते हैं कि सफलता को चाहने वालों के प्रति वार्निंग क्या है कि जो भी स्मृति का किला है, उस किले को मजबूत करना है, किले के अंदर रहना है, और साथ साथ दृढ़ संकल्प के द्वारा सभी दरवाजे खिड़कियों को बंद रखना है, तो आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। और अगली पॉइंट है कि वर्तमान समय सीजन सहज प्राप्ति का है, सहज प्राप्ति का योग है, तो इस सहज प्राप्ति के समय में तो बाबा ने कहा कि सहज योगी भव के वरदानी हो, अधिकारी हो। इस सहज प्राप्ति के समय में सभी सहज योगी भव के वरदानी और अधिकारी हो। तो बाबा कहते हैं यदि मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर के भी क्या मेहनत करते रहे, तो मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर के भी क्या किया? सर्वसमर्थ बाप जो मुश्किल को आसान करने वाला है, जो असंभव को संभव करने वाला है, उस बाप का साथ मिलने के बाद भी अगर मेहनत करते रहे तो बाप का साथ मिलकर के भी क्या किया? तो बाबा ने कहा कि ये मुश्किल क्यों लगता है, मुश्किल क्यों लगता है? तो इसके लिए बाबा ने कहा कि बोझ उठाने की आदत है, तो अनेक प्रकार के जो बोझ हैं वो आप उठाते हो तो तो मुश्किल लगता है। तो बाबा ने कहा कि बोझ को छोड़ो और हल्के बनो, हल्के बनेंगे फरिश्ते बनेंगे तो सदा उड़ते रहेंगे और उड़ाते रहेंगे। और संयम युग का जो समय है उस समय का हम पूरा लाभ ले सकेंगे। और अगली वार्निंग है कि हम सभी ब्राह्मण आत्मा जो संकल्पों के धनी हैं, बाबा ने कहा कि आपके संकल्पों की, आपके पास संकल्पों की बाजी है, उस बाजी को आप जैसा यूज करेंगे वैसे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो बाबा ने कहा कि यदि आपके संकल्प शक्तिशाली हैं, श्रेष्ठ हैं, पॉजिटिव हैं, तो उसका भी आपको फल मिलता है। यदि आपके संकल्प नेगेटिव हैं तो उसका भी आपको उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे कि बाबा ने कहा कि यदि आप खुशी का संकल्प करते हैं तो आपको खुशी की अनुभूति होती है और वातावरण भी खुशी का बनता है, और यदि आपने दुख का संकल्प किया तो आपको दुख की अनुभूति होगी। और बाबा ने कहा कि यदि खुशी के माहौल में, खुशी के वातावरण में भी यदि आपने दुख का संकल्प किया तो उस समय भी आपको दुख का अनुभव होगा। जैसे कोई फंक्शन है, खुशी का माहौल है, खुशी का फंक्शन है, लेकिन किसी की आदत हो कि दुख का संकल्प पैदा करने का, तो उस खुशी के माहौल में भी, खुशी के वातावरण में भी उसको दुख की अनुभूति होगी। तो बाबा ने कहा कि आपके पास संकल्प एक शक्ति है और उसको आपको पॉजिटिव रूप में यूज करना है। तो बाबा ने कहा संकल्प शक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि उससे आप जैसा चाहे वैसे वातावरण बना सकते हैं, खुशी का अनुभव कर सकते हैं। तो वातावरण बनाना, सृष्टि रचना वह आपके हाथ में है। दृढ़ संकल्प किया तो कैसा भी विघ्न है, परिस्थिति है, बाधा है, उसको आप शुभ मंत्र कर सकते हैं। और यदि आपको उस समय संकल्प आया कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो बाबा ने कहा उस समय शुभ मंत्र काम नहीं करेगा। तो ये कुछ बातें थी जो बाबा ने मुरली में कही। यदि हम इसको वार्निंग के रूप में लेंगे तो हम इस जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और सफलता को हासिल करते रहेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। संडे की मुरली है 29/12/83, पार्टियों से मुलाकात, सेकंड ग्रुप, होमवर्क मिला था मेमोराइजिंग मेथड। बाबा कहते हैं सदा सफलता के सितारे, सदा चमकते हुए सफलता के सितारे हैं। यह स्मृति रहती है, आज भी इस आकाश के चमकते हुए सितारों को बड़े प्यार से, सब बड़े प्यार से देखते हैं क्योंकि रोशनी देते हैं, चमकते हैं इसलिए प्यारे लगते हैं। तो आप भी सफलता के चमकते हुए सितारे हो। बाबा ने यह भी कहा कि सफलता सब मांगते हैं, पसंद करते हैं। कोई तो प्रार्थना करते कहते यह कार्य सफल हो, बाबा कहते हैं और आप सफलता के सितारे बन गए। और बाबा ये भी कहते हैं सफलता के लिए कितना मेहनत करते हैं दुनिया वाले भी, बिना मेहनत से तो सफलता किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। कहते हैं देयर कैन बी नो गेन विदाउट पेन, कष्ट के बिना कृष्ण तो मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि पुरुषार्थ कुछ नहीं करना है। बाबा अपना असली स्वरूप को देखते हैं कि हम कल्प कल्प के सफलता स्वरूप आत्माएं हैं, सफलता के सितारे हैं। जैसे कहते हैं बुझे हुए दिए के पास कोई नहीं जाते हैं, तो इसीलिए हम जलते हुए दिए हैं जो औरों को रोशनी दिखाने वाले हैं। अब बाबा ये भी कहते हैं कि दुनिया वाले अभी भी जड़ चित्र के आगे जाके मांगते हैं, और हमारे जड़ चित्र भी अभी भी सभी को क्या दे रहे हैं, सफलता का वरदान दे रहे हैं, जो कि हम भूल चुके हैं। बाबा याद दिला रहे हैं आकर के। और ये पार्टियों से मुलाकात माना सम्मुख, जैसे कि बाबा एक एक को याद दिला रहे हैं कि आप सफलता स्वरूप हो, सर्वशक्तिवान हो, सबको सफलता का वरदान देने वाले हो। तो ये याद रखें कि हम कितना सफलता का वरदान सबको देते हैं। और अभी यह संगम युग, सभी प्राप्तियों का युग है, तो वो स्मृति दिला रहे हैं बाबा। दुनिया वाले आज भी प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि ये कार्य सफल हो, लेकिन हम जो संकल्प करते हैं जैसे कि वरदान स्वरूप बन जाता है, जैसे भाई जी ने बताया अभी रिवाइज किया, तो ये संगम युग एक ही युग है जो सब वरदानों का वरदानों को हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी कहते हैं जितनी भी मुश्किलातें आती है, मुश्किलातों को पार करने का, मुश्किलातों को खत्म करने का, समस्या को खत्म करने का एक ही तरीका है कि बाबा से वरदान लें, जिस वरदानों के आधार पर हम सब समस्याओं का हल कर सकते हैं। और बाबा ये भी कहते हैं कि आप एक एक जी हाँ जी आप एक एक जैसे कि सैंपल हो। और बाबा ये भी कहते हैं कि आपको देख जैसे कि आकाश में जो चमकते हुए सितारे हैं उनको सभी देखते हैं, टिमटिमाते हुए सितारे को भी नहीं देखते। तो उसी अनुसार हम अपने पुरुषार्थ से, अपने लगन से कितना हम चमक रहे हैं, और बाबा को इसी आधार पर बाबा को हम साक्षात्कार करा सकते हैं। तो बाबा भी इसीलिए आकर के हम सबको जैसे कि सम्मुख ये सम्मान दे रहे हैं जो हम भूल चुके हैं। हाँ हाँ, ये भी बाबा ने याद दिलाया है, आप कितने महान हो, ऊंच हो, जिसके कारण सभी याद करते हैं। और ये भी कहते हैं इस नशे में सदा निश्चय, इसी नशे में सदा रहो, ये भी कहा है बाबा ने। और सफलता के पीछे भागने वाले नहीं, सफलता स्वतः आपके पीछे पीछे आएगी। तो दुनिया वाले सफलता के पीछे कितने भागते हैं, लेकिन कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, तो अच्छे करते हैं, अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, तो क्या होता है, सफलता स्वतः अपने पीछे स्वतः आएगी। ओम शांति,
ओम शांति। तो हम कई दिनों से, दूसरे दिन तो आज आए हैं कि जो कल चली है मुरली 12/29/1283 की, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। तो मेमोराइजेशन मेथड के दूसरी कड़ी में हम अभी पहुंचे हैं। तो ये पंजाब जोन से बाबा मिल रहे हैं, उससे पहले जो मुख्य मुरली है, बाबा कहते हैं बड़े दिल वाले बाप के, बड़े दिल वाले दीराराम बाप के, आप बच्चे हो, आप क्या हो तो जग के आधार हो, उद्धार करने वाले हो, उदाहरण स्वरूप हो, इसलिए आप जगते हो तो संसार जगता है, अगर आप सोते हो तो संसार सोता है। तो योगी किस किस बात में सोया रहता है और किस किस बात में जगना है, विस्मृति से जगना है, नाज रख नखरे से जगना है, ईर्ष्या द्वेष जो हमारे अंदर है, कोई आगे बढ़ता है तो जो ईर्ष्या जो पैदा होता है उससे हमें जगना है। ये जगना तो है ही, अमृत वेला जगना तो है ही, हमेशा होश में रह के हमें कार्य करना है, बेहोशी की अवस्था में हमें कार्य नहीं करना है। तो ये बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। और ये सीजन कौन सा चल रहा है, प्रत्यक्ष फल खाने की सीजन चल रही है तो सहज प्राप्ति का सीजन चल रहा है, समय कौन सा चल रहा है, ये समय चल रहा है प्राप्तियों का युग का समय चल रहा है, सुख शांति के अंचली देने का समय चल रहा है, आपकी चरती कला से सर्व का कल्याण हो जाता है, ऐसा समय चल रहा है। और बाबा ने कहा है कि कौन सी किले में रहो, स्मृति के किले में रहो, और वातावरण कौन सा बनाओ, शक्तिशाली वातावरण का धरनी बनाओ। तो ये थी हमारी मुख्य मुरली। अभी हम आते हैं पंजाब जोन में, पंजाब के पार्टियों से जो बाबा मिल रहे हैं। तो बाबा ने इसमें 5 मुख्य पात्र को याद किए हैं, जिसमें एक पात्र बाबा भी आ जाते हैं। पहला है माया, दूसरी है गणेश, तीसरा है डॉक्टर, चौथा मरीज, और 5वां कौन है,
हम सुनने वाले।
नहीं, एक तो माया, गणेश, मरीज, डॉक्टर और बाबा, पांच हो गए। हाँ, तो इसमें बाबा इससे पहले जो संडे को चली थी मुरली उसमें खास करके स्वदर्शन चक्रधारी की बारे में बताए थे कि स्वदर्शन चक्र जो है दो या चार उंगली में नहीं चलाते, सिर्फ रहता है, एक ही उंगली में रहता है, एक ही उंगली अर्थात एक ही संकल्प। वो कौन सा संकल्प था? एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप और एक मैं का संकल्प हो। तो इसमें भी खास करके स्वदर्शन चक्रधारी के बारे में बाबा ने बताया है, विघ्न विनाशक के बारे में बताया है और छू मंत्र के बारे में बताया है और फेथ के बारे में बताया है। तो इसमें बाबा ने बताया है कि सभी स्वदर्शन चक्रधारी हो, स्वदर्शन चक्र चलता रहता है, जहां स्वदर्शन चक्र है वहां माया के विघ्नों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि स्वदर्शन चक्र क्या है? माया के विघ्नों को समाप्त करने वाला है। स्वदर्शन चक्र अर्थात माया नहीं। जब से बाप के बने तो क्या हो गया? सबसे पहले स्व का दर्शन हुआ। पहले खुद ही नहीं जानते थे कि मैं कौन हूं, मेरा बाप का नाम क्या है, मेरा घर क्या है, मेरा कर्म क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, कुछ नहीं पता था। तो जब से बाप के बने अर्थात स्व का दर्शन हुआ, स्व का दर्शन होने से क्या हो गया? हम विश्व कल्याणकारी बन गए। विश्व कल्याणकारी अर्थात विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक गणेश को कहते हैं। गणेश को कितनी पूजा करते हैं, कितनी प्यार से पूजते हैं उनको, कितना सजाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। तो ऐसे आप कौन हो? तो विघ्न विनाशक हो। तो विघ्न विनाशक होते हुए भी अगर विघ्न है बोलेंगे तो क्या होगा? विघ्न है कि कमजोर संकल्प से विघ्न आ जाए, क्योंकि एक कमजोर संकल्प अनेक कमजोर संकल्पों को पैदा करते हैं। तो विघ्नों का वातावरण बनाना अर्थात दुखों की वातावरण बनाना हमारे हाथ में हो जाती है। बाबा कहते ऐसे अगर समर्थ संकल्प करते हो कि मैं महावीर हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, तो महावीर हूं श्रेष्ठ आत्मा की संकल्प से वातावरण क्या हो जाते? तो खुशी को हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, तो उससे विघ्न खत्म हो जाते हैं। तो विघ्नों के सृष्टि रचना या खुशी के सृष्टि रचना किसके हाथ में? तो हमारी हाथ में है। अगर हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, समर्थ संकल्प करते हैं, तो छू मंत्र का मंत्र हमारे हाथ में आ जाती है। अगर कमजोर संकल्प करते हैं, साधारण संकल्प करते हैं, तो मंत्र काम नहीं करते हैं। और आगे क्या है कि यहां पे बाबा ने याद किया है डॉक्टर को और मरीज को। बाबा ने कहा है कि अगर कोई भी मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो पहले डॉक्टर को क्या पूछते, डॉक्टर क्या पूछते हैं मरीज से कि अगर हमारे ऊपर आपका फेथ है तो आप ठीक हो जाएंगे, अगर हमारे ऊपर फेथ नहीं तो कितना भी बढ़िया दवाई देंगे तो दवाई की असर नहीं आई, काम नहीं लिखा है, असर नहीं करेगी। बाबा ने बताया ये क्या हो गया? तो ये हो गया विनाशी बात। यहां क्या है? तो अविनाशी बात। तो अपने को हमेशा क्या समझना है? विघ्न विनाशक पूज्यात्माएं। विघ्न विनाशक पूज्यात्माएं को यादगार कितना, यादगार बहुत है, कितने लोग यादगार में पूजा करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आपका ये अंतिम विकारी जन्म होने के कारण से आपका पूजा नहीं होता है, लेकिन किसी न किसी रूप में होता तो है ही, इस जन्म का नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे सदा अपने को मास्टर सर शक्तिवान शिव के बच्चे गणेश समझकर चलो। अगर आप पता नहीं का कमजोर संकल्प करते हो तो उस पता नहीं के चक्कर में फंस जाते हो। तो पता नहीं का चक्कर से मुक्त होने का उपाय क्या है कि अपने को सदा खुशी के झूले में झूलने वाले सबके दुख हरता बनो, झूले में झूलने वाले सबके दुख हरता बनो, विघ्न हरता बनो और सबको मुश्किल को सहज करने वाले बनो। इसके लिए चाहिए दृढ़ संकल्प और डबल लाइट। दृढ़ संकल्प और डबल लाइट रहेगी तो हमें याद रहेगा कि हम मेरा कुछ नहीं, जो भी कुछ है, जो भी कुछ है बाप का है, बाप का है। अगर मेरा समझते हैं तो विघ्न में फंस जाते हैं। इसीलिए खुशी खुशी से सेवा करने वाले बनो। अगर खुशी खुशी से सेवा करते हैं तो क्या होते थे, माया नहीं आती है। इसीलिए खुशी खुशी से सेवा करने वाले माया के विदेह देने वाले बनो। ओम शांति।
ओम शांति। तो आज दिल वाला बाप आया है कौन से बच्चों को मिलने, बड़ी दिल वाले, बेहद के दिल वाले बच्चों को मिलने आए। कहां से आए हैं, परम धाम से आए हैं और यहां पर बच्चों की बड़ी दिल दिखाई है। तो आज हम देखेंगे कि माइंड मैपिंग से, तो इसमें कि सहज प्राप्ति का युग, और बाबा ने बताया कि ये युग कौन सा है, तो संगम युग है। सतयुग की तो महिमा बाबा ने दी हुई है कि हमें वहां पहुंचना है, उसके बारे में हम लक्ष्य रखते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जो तुरंत प्राप्ति का जो युग है वो कौन सा है, संगम युग। तो यहां सबसे बड़ी कौन सी प्राप्ति होती है, हमें स्वयं शिव बाबा मिलता है जो उस युग में नहीं मिलता, सतयुग में। तो इस मुरली में अभी हम देखेंगे कि पहले बाबा आ गया, दिलवाला बाप अपने बड़ी दिल वाले रखने वाले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं, इसलिए बाबा कौन हो गया, दिलाराम। फिर हम देखते हैं कि बाबा ने फल दिए हैं, कौन सा फल, तुरंत फल, प्रत्यक्ष फल। तो इस फल से अगर कोई वंचित रहता है तो उनके बोल क्या होंगे, पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। तो फिर बाबा ने कहा कि अगर ऐसे प्रत्यक्ष फल से वंचित आत्माएं होंगी तो वो व्यर्थ में ही क्या करेंगी, मेहनत करेगी हर बात में, और मेहनत करने के कारण क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, और थकने के कारण क्या होगा, मेहनत करने के कारण थकने का कारण क्या है, आलस्य और अलबेलापन है। अगर वो प्रत्यक्ष फल उन्होंने प्राप्त किया है तो वो क्या होंगे, सहज योगी होंगे। फिर क्या है उनके पास, वर्षा है, वरदान है, सीजन है, बड़ी दिल वाला दाता है। सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को मेहनत हो नहीं सकती, वे सदा मेहनत से मुक्त होंगे। फिर संकल्प किया और सफलता मिल गई, कैसे होगा कार्य, एकदम क्विक, जैसे स्विच का उदाहरण दिया बाबा ने, स्विच ऑन किया और सिद्धि को प्राप्त किया। फिर इस सहज प्राप्ति का जो युग है, संगम युग, तो उनके पास वो फल प्राप्त है तो ऐसे बच्चों की दिल कैसी होगी, बड़ी दिल होगी, फ्राग दिल होगी, दातापन की उनके पास भावना होगी, सदा खुश होंगे और जहान को भी खुश रखेंगे। खुद का कोई भी दुख दर्द है उसको दिखाएंगे नहीं चेहरे पर, खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशी बांटेंगे। ऐसे बाबा ने कहा कि आप खुशनसीब आत्मा हो। तो बाबा ने कहा कि आप ही आधार मूर्त हो, अगर आप सो गए, कौन सी नींद, चैन की, सुख शांति की नींद, तो वे आत्माएं भी सो जाएंगे। आप जागती ज्योत हो, आप जागेंगे तो जहान जागेगा। बाबा ने कहा कि आपकी अगर चढ़ती कला है तो उन आत्माओं का भी उसमें कल्याण समाया हुआ है। फिर अभी जो यह समय चल रहा है संगम युग का, वर्तमान समय की जो सीजन चल रही है, तो बाबा ने कहा प्रत्यक्ष फल खाने की। तो अगर प्रत्यक्ष फल कौन सा, कि एक शक्तिशाली संकल्प किया, कर्म किया और एक बीज द्वारा पदम गुना फल पाया। लेकिन क्या होता है कि फल निकलने के पहले माया रूपी पंछी क्या कर देती है, उसको खा लेती है। तो फिर उसके लिए क्या करना है, बाबा ने कहा कि अटेंशन रहता है आपका, अगर अटेंशन है, मेहनत कर रहे हैं, योग लगाते भी हैं, पढ़ाई भी पढ़ते हैं, यथाशक्ति सेवा भी करते हैं, फिर भी जैसा प्राप्त होना चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो बाबा ने उसके कारण आगे बताए कि संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली नहीं है। तो संकल्प करते समय ही क्या कर देते हैं, बीच में उसमें मिलावट कर देते हैं कि वातावरण ठीक नहीं है, वा बीज ठीक नहीं है, या धरनी ठीक नहीं है, कोई न कोई कंप्लेंट है। तो उसमें भी बाबा ने क्या कहा कि विशेष क्या कर देते हैं, कच्चा फल खा लेते हैं। कौन सा कच्चा फल खा लेते हैं, कि अगर कुछ थोड़ी बहुत सफलता मिल भी जाती है तो क्या करते हैं कि मैंने किया। हद का संकल्प माया क्या कर देती है, जैसे कि कच्चा फल खाने जैसा है, कि माया भी भिन्न भिन्न समस्याएं, वातावरण, संग दोष, परमत वा मनमत, व्यर्थ संकल्प रूपी पंछी फल को समाप्त कर देते हैं। कौन कौन से पंछी है, संग दोष, परमत, समस्या, मनमत और व्यर्थ संकल्प रूपी, तो ये पंछी फल को खा जाते हैं, मिला हुआ फल। अगर फल आपके पास है वो प्रत्यक्ष फल, तो क्या होंगे आप, तीनों लोकों में आपके राज्य के समय दुख व अशांति का नाम निशान नहीं होगा। अगर आप प्रत्यक्ष फल के प्राप्ति है, आपके पास है वो प्रत्यक्ष फल, तो आप स्वयं भी कैसे रहेंगे, सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे। और बाबा ने कहा कि तीनों लोकों में आपके राज्य में, फिर जो आने वाला राज्य है वहां भी सभी कैसे होंगे, सुखी और शांत होंगे। सुख शांति की अंचली द्वारा बहुत समय की मुक्ति की आशा सर्व की पूर्ण हो जाती है। और हमारी सुख शांति की अंचली से खुद भी अनुभव करेंगे और दूसरे को भी कराएंगे, तो उसी अंचली से उन आत्माओं को भी क्या हो जाएगा, सुख शांति पूर्ण रूप में मिल जाएंगे। फिर इसके लिए बाबा से हमें श्रीमत कौन सी मिली है, कि अगर आपको इस संगम युग में सहज प्राप्ति होनी चाहिए तो इसके लिए जो श्रीमत दी है, और उस श्रीमत पर अगर नहीं चलेंगे तो क्या होगा, क्या होगा अगर इस प्रत्यक्ष फल के लिए जो श्रीमत दी है उस पर हम नहीं चलेंगे तो क्या होगा, मुश्किल हो जाएंगे, बोझ उठाते रहेंगे, और बोझ उठाते हैं इसलिए मेहनत है, मेहनत है इसलिए क्या हो जाएंगे, फिर आलस्य, अलबेलापन भी है। अगर श्रीमत पर चलेंगे, संकल्प में उस श्रीमत कौन सी दी है बाबा ने, कि संकल्प में दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता नहीं है तो समझो थोड़ा सा रास्ता खुला है, वहां से माया आ सकती है। और कौन सी बाबा ने कहा कि जैसे कि मजबूरी से चलते हैं, कि नियम प्रमाण इस बात को करना ही पड़ेगा, फिर लोक लाज, ब्राह्मण परिवार की लोक लाज बाबा ने यहां पर बताई कि करना ही पड़ेगा, क्या लोग क्या कहेंगे, मजबूरी व भय से नियम से चलेंगे। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो क्या होगा, जो हमें श्रीमत मिली है इस संग सहज प्राप्ति का फल प्राप्त करने की, तो दृढ़ता की निशानी है सफलता, अगर दृढ़ता होंगे तो सफलता मिलेगी। जो संकल्प में भी नहीं होगा वह प्राप्ति होगी, संकल्प से प्राप्ति ज्यादा होगी, जो बाबा ने कहा आपने संकल्प भी नहीं किया होगा ऐसे आपको प्राप्ति होगी। बोझ को छोड़ हल्के बन फरिश्ता बनकर उड़ेंगे, और उड़ेंगे तो क्या होगा, फिर बाबा की ब्लेसिंग मिलेंगी, याद प्यार मिलेगा। तो ऐसे सदा दिल खुश, सदा सहज फल की प्राप्ति स्वरूप, सदा वरदाता द्वारा सफलता को पाने वाले वरदानी वारिस बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।
ओम शांति। तो ये 29/83 की जो अव्यक्त वाणी है उसके आधारित ड्राइंग मेथड है। हमने अलग अलग मेथड से मुरली का भी श्रवण किया, कितने पात्र थे नए तरीके से बताया, पात्र तो ऐसे मुरली याद रखना बहुत सहज हो सकती है। वार्निंग दी अरविंद भाई ने और मेमोराइजेशन मेथड हल्दर भाई ने बताया, माइंड मैपिंग, तो इसी तरह ये है ड्राइंग मेथड। कोई भी हम बात सुनते हैं तो उसका चित्र तुरंत मन में आ जाता है, भले हाथ से हमको बनाने आए ना बनाने आए, लेकिन मन में तो आ ही जाता है, बुद्धि में आ जाता है, चाहे वो लौकिक में है चाहे अलौकिक में है। कोई भी हम बात करते हैं तो चित्र आता है जरूर। तो इसमें भी अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास किया गया है। तो ये सबसे पहले तो है दिल, बड़ा दिल, बेहद के दिल, बाप के दिल, दिलाराम बाप दादा। तो हम बच्चों को देख रहे हैं, कौन सी आत्माओं को, ये आत्माएं हैं और ये दिल है। तो बाप का भी दिल है, बड़ा है, और बच्चों का भी दिल बड़ा है, और हम आत्माओं को देख रहे हैं कि दिल खुश बच्चे हैं, बेहद के दिल वाले हैं और फ्राक दिल वाले हैं, खुश नसीब आत्माएं हैं। बाबा हम सबके अंदर विशेषताओं को देख रहे हैं, सर्व के दिल लेने वाले दिलाराम बाप दादा। यह है फिर जागती ज्योत। तो इसमें बताया आप जगते तो जग जागता है, आप सोते तो जग सोता है। तो जो आजकल नींद की बहुत बीमारी है, तो अगर हमारी ब्राह्मणों की नींद में भी हलचल होती है तो संसार की नींद में भी हलचल हो रही है, इसलिए हमारी नींद भी डीप स्लीप होनी चाहिए। अगर हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है तो जरूर कहीं ना कहीं श्रीमत की अवज्ञा कर रहे हैं हम, उल्लंघन कर रहे हैं, पालना नहीं कर रहे हैं, तो हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। इसलिए श्रीमत पर अगर हम एक्यूरेट चलते हैं तो हमारी थोड़ी नींद भी हमको फ्रेश अनुभव होता है, अच्छी नींद होगी। और हम ही अगर सारे दिन में व्यर्थ चिंतन पर मत जो बीच में बताया, समस्याएं, संग दोष, वातावरण, उसमें अगर रहते तो हमारी नींद भी प्रभावित होती है, इसलिए पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। तो हमारी नींद भी अच्छी होनी चाहिए तो संसार वाली आत्माएं सो सकेंगे। तो आधार मूर्त बाबा ने कहा कि तुम बच्चे आधार मूर्त, जहान के आधार मूर्त हो, आप सोते हो जग सोता है, आप जागते हैं जग जागता है, आपकी चढ़ती कला तो सर्व का कल्याण होता है। तो इसमें है कि हमेशा हमको जागती ज्योत अर्थात होश की अवस्था में रहना है, सतर्क जग रहना है, सचेत रहना है, जागरूक रहना है। और ये हम रहेंगे तो हमारा जो बोझ है उतरता जाएगा। जो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि अगर आप याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर्म विनाश होते जाएंगे, ममत्व तो मिट जाएगा और बाप के गले का हार बन जाएंगे। तो याद की जो शक्ति है कितनी हमारे लिए फायदेमंद है, और वो याद सहज प्राप्ति का अभी समय है, सहज याद का समय है। इसलिए बाबा ने मुरली में वरदान भी दिया कि तुम बच्चे सहज योगी हो। तो इस तरीके से जागती ज्योत बन के रहेंगे हम, हमारे से बोझ उतर जाएंगे तो हम क्या होंगे, फरिश्ता बन के उड़ते रहेंगे और दूसरों को भी उड़ाते रहेंगे। अर्थात हमारा पुरुषार्थ सहज है तो दूसरे भी हमारे पुरुषार्थ को सहज देखते हुए सहज पुरुषार्थ के अनुभव भी बन जाएंगे। अगर हमारा पुरुषार्थ कठिन लग रहा है, हमें स्वयं ही कठिन लग रहा है, तो दूसरों को भी कठिन ही लगेगा, तो हम भी शक्तिशाली नहीं, दूसरे भी शक्तिशाली नहीं बनेंगे। तो हमारे ऊपर बाबा ने कहा जिम्मेवारी आधार मूर्तो उद्धार मूर्तो, हमारे संकल्प बोल कर्म सारे संसार के लिए एक उदाहरण है। तो जो यहां से चल रहा है वही संसार उसके आधारित चल रहा है। फिर नेक्स्ट बाबा ने कहा तुम बच्चे स्वदर्शन चक्करधारी को, तो स्वदर्शन चक्कर से कितने फायदे होते हैं, तो स्वदर्शन अर्थात बाप के बच्चे बने तो स्व का दर्शन हुआ, तो स्व का दर्शन होने से हमारे जो अंदर के गुण हैं वो जागृत उठे, हम आत्मा कौन है, कहां से आए, कहां जाना है, क्या थे, क्या बन गए, बाबा ने हमको क्या बना दिया, कैसे तमो प्रधान सतो प्रधान इन सब अवस्थाओं से गुजरे, कैसे चार युगों का चक्कर लगाया, पांचों वर्णों का चक्कर लगाया, तो सारा स्व का दर्शन हो गया। 84 जन्म लिए, 84 पिता मिले, अब ये कि पारलौकिक पिता मिला है वो हमको वापस ले जाने के लिए आया हुआ, तो सारा स्वदर्शन चक्कर। तो स्वदर्शन चक्कर करने से माया के चक्र खत्म हो जाते हैं, माया का गला कट जाता है। तो स्वदर्शन चक्कर हमेशा हमको फिराते रहना है। तो बाबा ने कहा फिर बाप के बच्चे अर्थात स्व का दर्शन विघ्न विनाशक मायाजीत बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट है विघ्न विनाशक गणेश को दिखाया, तो गणेश कौन है, शिव का बच्चा है। तो बहुत अच्छा स्वामान है, मैं शिव का बच्चा गणेश हूं। अब इस गणेश से कितनी स्मृतियां बताई कि कितनी प्रार्थना करते हैं लोग, उसकी पूजा होती है, खर्चा करते हैं, श्रृंगार करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया भी आने वाला है, इसी नेक्स्ट मंथ में आएगा। तो संसार में कितना गणपति के प्रति उन लोगों की आस्था है, उससे उनकी कितनी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं, तभी तो वो एक जड़ मूर्ति मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है और हम चेतन मूर्ति हैं। तो और हम अपनी ही शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करने में उतना सफलता अनुभव नहीं करें तो फिर क्या कहा जाए। इसलिए बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर भी अगर सफलता नहीं की अनुभव नहीं तो क्या किया बनके। तो ये विघ्न विनाशक, मैं शिव का बच्चा गणेश हूं, विघ्न विनाशक हूं। फिर नेक्स्ट फल भी है, बीच में फल भी आया था। तो ये सहज प्राप्ति का युग है, प्रत्यक्ष फल का युग है, ताजा फल तुरंत तवा टू मौत। तो ये जो फल है हमेशा हमको बासी होकर नहीं रख नहीं देना है, आज की मुरली आज के लिए ठीक रहेगी ये, इसका चिंतन हमको आज ही करना। वैसे तो हमेशा ताजी रहती है लेकिन फिर भी अगर हम उसका आज ही पढ़ते हैं, उस पर चिंतन करते हैं तो वो समय हमारा वरदानी समय है, तो वरदान के रूप में वो हमारे मन बुद्धि में प्रिंट हो जाएगी। नहीं तो अगर आज की मुरली छोड़ेंगे फिर ठीक है दोपहर को पढ़ लेंगे शाम को पढ़ लेंगे तो वो खिसक जाएगा, क्योंकि दूसरी विकराल परिस्थितियां हमारे सामने और भी खड़ी हैं जो समय आने पर हमको प्रभावित कर देंगी। इसलिए वरदान का महत्व है, समय का बहुत महत्व है। जो कहानी आती ना, दो बंदर बंदरी थे, तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि छलांग मार दो तो फरिश्ता बन जाओगे, तो बंदरी ने छलांग मार दी तो बन गई फरिश्ता। तो बंदर ने सोचा तो गड़बड़ है, तो मैं टूट जा मेरी हड्डी फसली टूट जाएगी, और उसने उस समय छलांग नहीं मारी, उसने दो मिनट बाद मारी, एक मिनट बाद मारी, तो उसकी हड्डी फसली टूट गई क्योंकि समय निकल गया। तो ये हमको फरिश्ता बनने का समय है। तो ये फल लेकिन कच्चा फल नहीं खाने का, मैंने किया और कच्चा फल खाएंगे तो क्या होगा, फिर पेट दर्द होगा, पेट दर्द होगा तो डॉक्टर के पास जाने पड़ेगा, फिर नेचुरोपैथी करना पड़ेगा, कितना टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी हमको परहेज रखना बहुत जरूरी है, बदहजमी ना हो, ज्ञान को पचाना है। तो सहज प्राप्ति का युग है, खुशी खुशी में रहने का युग है, वरदानी युग है, उड़ती कला का युग है, चढ़ती कला का युग है। तो एक कच्चा फल नहीं खाना है, सेवा करके हमको अर्पित कर देना है, निमित्त भाव। और उसका अगर हमारे में निमित्त भाव रहता है उसका परिणाम यह है कि हम अपना शो नहीं करेंगे। नहीं तो अगर सेवा थोड़ी की और प्रत्यक्षता ज्यादा करने की मानसिकता रहती है, थोड़ी सेवा की और आगे आगे रहने का रहता है या फोटो खिंचाने का रहता है तो हैं दूसरों को पता पड़े कि ऐसे सेवा करनी होती है, ये हम सबको दिखाने की जरूरत है। हाँ तो वो सब चीजें देखने में आती हैं समय पर, तो हमको उन चीजों में नहीं जाने का है। अगर कच्चा फल खा दे तो वो हमको प्रभावित कर देगा और हमारा किया क्रय सारे पर पानी फिर जाएगा। फिर बाद में अंत में देखेंगे हम बाबा को बोलेंगे हमने इतनी सेवा की और झोली खा ली होगी, फिर बाबा स्क्रीन पर दिखाएंगे तो पहले से हम अपने आप को स्क्रीन पर देखते रहे कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी जांच अपने आप को दिख रहे हम। फिर नेक्स्ट है सफलता के सितारे। जैसे यहां एग्जांपल दिया था बाबा ने आकाश के सितारों के, अगर आकाश के सितारे जो चमकते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं सबको, खुशी होती है, उनके प्रति आकर्षण पैदा होता है। तो हम भी कौन से सितारे हैं, सफलता के सितारे हैं। तो सफलता वरदान मिला हुआ अधिकार है, तुम बच्चों को अधिकार है और वरदान है, तो इसलिए सफलता परछाई की तरह पीछे पीछे आएगी। सफलता के पीछे लोग संसार में भागते हैं, अनेक प्रकार की युक्तियां रचते हैं, लेकिन हमें सफलता की युक्ति रचने का वरदान ही मिला हुआ है, लेकिन मौके पर समय पर करेंगे तो, अगर समय पर नहीं करेंगे तो सफलता भी असफलता में तब्दील हो जाएगी। तो यह है सफलता के सितारे बन के रहना है। तो ये बाबा सफलता के सितारे बच्चों को देख रहे हैं, देखो गोदी में तीन बच्चे हैं, ये दिख रहे हैं ना, एक दो, हाँ एक, हाँ ये है, ये है कमलेश और ये है अरविंद भाई और ये आशीष भाई, तीन है, किशोर बीच में पीछे है, ये बच्चे हैं बाबा की गोद में है, और ये बीच में निखिलेश भाई हैं, इधर ये बीच में निखिलेश भाई है। तो ये सफलता के सितारे हमेशा बन के रहना। फिर ये विघ्न विनाशक, फिर बाबा ने कहा विघ्न हर्ता बनो, आप बच्चे विघ्न हर्ता हो, दूसरों को विघ्न हरने वाले हो। तो गणेश की महिमा की है, हाँ ये दूसरे गणेश है, मन श्रृंगारा हुआ है और ये डांस, ये शिव का बच्चा गणेश है और ये दूसरा गणेश है जो मूर्ति पूजा वगैरह होती है सजाया हुआ प्रार्थना करते हैं। हाँ एक सुदर्शन चक्र दे रहे, एक विघ्न विनाशक है। तो हमको भिन्न भिन्न तरीके से मुरली को आत्मसात करने के लिए, चाहे ड्राइंग मेथड हो, माइंड मैपिंग मेथड हो, मेमोराइज मेथड हो, या दूसरा कौन सा पढ़ा है, स्टॉर्म ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक कैची मेथड हो सुना रहे हैं, और एक पात्र हमारा आया ही नहीं है आज क्योंकि मौसम से लगता प्रभावित या कोई सेवा भी आ सकती है। तो ये वाली जो ड्राइंग मेथड की, इस तरह ड्राइंग तो जितना लंबा खींचना खींच सकते हैं, और एक ये लास्ट में है जो बाबा ने उसकी बात की थी, क्या नाम, डॉक्टर के ऊपर फेथ होना चाहिए, तो ये डॉक्टर आशीष है ऊपर और नीचे कमलेश होया पड़ा है, तो उनको पूछ रहे पहले डॉक्टर फेथ है, वो पूछने के बाद ही कमलेश डेटा इधर, और उसको स्टेथोस्कोप से चेक कर रहे हैं कि हार्ट वाल ठीक है, हार्ट बीट ठीक चल रहा है, वो सब ये चीज की हार्ट है या नहीं है, बिना हार्ट के, हार्ट किसको दे के रखा है, हार्ट अपने दिल में कोई दूसरे को तो नहीं बसा के रखा हुआ है, तो आशीष वगैरह चेक कर रहा है उसके अंदर कौन कौन बैठा हुआ है। ओम शांति।